जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमोनतीरा वनचारी तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राधा गिरधारी राधा गिरिधारी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बालदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिके। श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 5 श्लोक संख्या 7 गावः विषः हरिद्रा तैला रुषिता विचित्रा धातु प्राहशक बर्हशक वस्त्र कांचन मालिनः गावो वृषाव वत्स हरिद्रा तैल ऋषिता हरिद्रातैलरूषिता वस्त्रकांचनमालिना वस्त्रकांचनमालिनः वृषावत्सतरा हरिद्रातैलरूषिता चित्रादातुबर्हस्त्र वस्त्रकाञ्चनमालिनः आवो वृषावत्सतरा हरिद्रातैलरूषिता कांचनमालिनः वृषावत्सतरा हरिद्रातैलरूषिता वस्त्रकांचनमालिनः शब्दार्थ इस प्रकार है गावः गौं वृषा बैल वत्सतरा बछड़े हरिद्रा हल्दी तैल तेल रूषिता लेप किए गए विचित्र तरह तरह के धातु रंगीन खनिज बर्हश्रक मोरपंख के हार वस्त्र कपड़े कांचन सुनहरे गहने मालिनः मालाओं के सजाए हुए अनुवाद और तात्पर्य ज्वाइंट डे से श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जाए। अनुवाद गांवों बैल तथा बछड़ों के सारे शरीर में हल्दी तथा तेल के साथ नाना प्रकार के खनिजों का लेप किया गया था। उसके मस्तकों को मोर पंख से सजाया गया था। उन्हें मालाएं पहनाई गई थी और ऊपर से वस्त्र तथा सुनहरे गहनों से आच्छादित किया गया था। तात्पर्य, भगवान ने भगवद्गीता में कहा, आदेश दिया, ऋषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्यकर्म सुझावजम, खेती करना गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के गुण हैं। नंद महाराज वैश्य जाति के वैश्य जाति के खेती हर थे। किसी तरह गांवों की रक्षा करनी चाहिए और यह वैश्य जाति कितनी संपन्न थी इसका वर्णन इस श्लोक में हुआ है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि गांवों बैल तथा बछड़ों की इतनी सुंदर ढंग से देखभाल की जाती होगी और उन्हें वस्त्रों तथा बहुमूल्य सुनहरी गहनों से इस तरह सजाया जाता होगा। वे बैल कितने सुखी थे। श्रीमद् भागवतम में अत्यंत अन्यत्र वर्णन है कि महाराज युधिष्ठिर के काल में गांवें इतने सुखी थे कि उनके दूध से गोचर भूमि सिक्त हो जाती थी। यह है भारतीय सभ्यता। फिर भी उसी भारतवर्ष में ना जाने कितने लोग वैदिक जीवन शैली छोड़ने तथा भगवद्गीता की शिक्षाएं ना समझने के कारण कष्ट भोग रहे हैं।
ओम ज्ञान विरंदस्य ज्ञानांजन शलाभय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वापदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतावदकमलं श्रीगुरुन्मीष्टमांस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। पिछली बार भी हम चर्चा किए थे प्रसंग गायों के विषय में था। ऐसा लगता है कि भगवान ने कहा कि तुम ही बोलो गायों के विषय में। गायों के प्रसंग है तो गाय के ऊपर ही चर्चा करते हैं। सार रूप में श्लोक में कहा गया है कि गायों के ऊपर आधारित जो समाज है वो कितना समृद्ध था। हम आजकल समृद्धि की बात करते हैं, लेकिन ये समृद्धि केवल काल्पनिक है, काल्पनिक समृद्धि है। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास 500 करोड़ है, कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास 3 करोड़ का फ्लैट है, ठीक है, 3 करोड़ का फ्लैट है, लेकिन वो 3 करोड़ कहाँ है, वेयर इज दैट। अगर हम लोग बम्बई में एक बम गिर जाए वो 3 करोड़ जो है, 3 करोड़ का फ्लैट सर कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले जमाने में ऐसा बात करते थे, अगर किसी को अपनी लड़की किसी को देना है, कोई परिवार को देना है, वो देखते हैं कि उनके पास कितना जमीन है, कितना गाय है, ये उनकी समृद्धि थी। तो वास्तविक समृद्धि जो है, भौतिक समृद्धि भी अगर आज मापा जाए, वो जमीन और गाय है। वो स्क्वेयर फीट वाला फ्लैट नहीं है, कितना मेरे पास शेयर के कितना कितना कागजात है वो नहीं है, और मेरे पास कितने नोट है वो भी समृद्धि नहीं है। क्योंकि ये जो नोट जो दिया जाता है, 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए का ये नोट है, अस्तित्व में नोट है वो समृद्धि नहीं है। तो इसके विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला ये श्लोक में क्या बताया गया है वो पहले जानने के प्रयास करेंगे। ये श्लोक का प्रसंग क्या है, ये श्लोक का प्रसंग ये है कि नंद महाराज नंदोत्सव मना रहे हैं। नंदोत्सव कैसे मनाया गया है उसका वर्णन इस श्लोक में आता है। नंद महाराज के घर में कृष्ण जन्म लिए, उसके विषय में हमने पहले श्लोक में सुना कि किस प्रकार कृष्ण दोनों जगह जन्म लिए, कहा देवकी के गर्भ से और यशोदा के गर्भ से साथ साथ में जन्मे। नंदस्त्वात्मजः, आत्मजः का अर्थ क्या है, आत्मा से प्रकट हुए। वैसे अनेकों ने को कारण बताया गया है कि अनेकों को प्रमाण दिया गया भागवत से अन्य शास्त्रों में कि किस प्रकार कृष्ण यशोदा मय का पुत्र है। कृष्ण इज सन ऑफ यशोदा। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं नंदस्त्वात्मजः, ब्रह्मा जी स्वयं पशुपांग जाया, अंग जाया, अंग कार्य उनके शरीर से उत्पन्न हुए, कौन से पशुपा, पशुओं को पालन करने वाले नंद महाराज हैं, उनके अंग से प्रकट हुए। तो भगवान को हमेशा ये कृष्ण को ऐसा संबोधित किया गया है कि वो कौन है, इज अ कवहर्ड बॉय। वैसे शास्त्र के प्रमाण है, बहुत आचार्यों के द्वारा वर्णन किया गया है कि कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ, क्योंकि यशोदा मैं सुबह उठ के देखी, सारे लोग आके देखे तो यशोदा मैं की गर्भ के साथ कृष्ण का जो नाभि का जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन था। आश्चर्य की बात है, अगर वसुदेव कृष्ण को उधर से लेके आए, कहां से, मथुरा से लेके आए हुए, ये कनेक्शन कहां से आ गया है, कनेक्शन कुछ करके गए कि वो तो नहीं हो सकता है। यानी सहज रूप में कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, लेकिन जब देवकी के गर्भ से प्रकट हुए वो कैसे प्रकट हुए थे, चतुर्भुज में प्रकट हुए थे। लेकिन जब यशोदा माई के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे एक बच्चा प्रकट होता है ना, जैसा मलमूत्र के साथ आता है ना, वैसे ही प्रकट हुए और क्या क्या रो रहे थे। उधर देवकी के सामने ऐसा रोना धोना नहीं था, देवकी के सामने बड़े बड़े उपदेश थे, देवकी तो ही था। जैसे एक बच्चा जन्म लेके क्या करता है, वैसे ही कृष्ण ने यशोदा के सामने जन्म लिया। उन्होंने उनको हिम्मत नहीं हुई कृष्ण को यशोदा मय को अपना ऐश्वर्य दिखाने की, क्योंकि यशोदा मय का वात्सल्य, शुद्ध वात्सल्य प्रेम इतना महान है, कृष्ण जो है वो उनके सामने वैसे जैसे बच्चा होता है, साधारण बच्चा ऐसे जन्म लिए नॉर्मली, और यशोदा मय भी साधारण बच्चे के रूप में, ये है शुद्ध विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस। तो इस प्रकार सब लोग नंद महाराज सब एकदम बड़े आनंद से वो नंदोत्सव मनाने लगे। नंदोत्सव कैसे मनाए इसका वर्णन इधर आता है, हाउ डू सेलिब्रेट नंदोत्सव। लेकिन आजकल एक गोविंदा कहते हैं जन्माष्टमी का गोविंदा, वैसा नहीं मनाए थे दही हंडी, पता नहीं कहां से शुरू हुआ दही हंडी सब लोग हंडी लगाते, दही दही रखते हैं उसके अंदर, उस नोट रखते हैं, ऐसा सुना मैं, कुछ पैसे रखते हैं, बाद में ऊपर चढ़ के उसको मारते हैं तो नीचे गिरता है, सलो नशे में घूमते रहते, ये ऐसा नहीं बना है कोई। हाँ हाँ, हाथ पैर टूट जाता, कोई मर भी जाता है, तो इस प्रकार नहीं था। ये समृद्धि नहीं है, ये पागलपंती है। नंदोत्सव नंद महाराज ने अगले दिन मनाया, जन्माष्टमी जिस दिन मनाते हैं उसके अगले दिन मनाया। He celebrated this past time, this. तो नंदोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अंदर नंदोत्सव सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या बात थी, पिछले श्लोक में हमने सुना कि किस प्रकार नंद महाराज ने कि अपने जितने भी गोकुल में हर घर में सब जगह सजाया गया था। छठे श्लोक का तात्पर्य नहीं है, उसके अंदर क्या वजपुरा द रेसिडेंस ऑफ नंद महाराज फुल्ली डेकोरेटेड विद वैरायटीज ऑफ फेस्टून्स एंड फ्लैग्स। बहुत जगह झंडे लगाए, अपने अपने घरों को सजाए, हर जगह कैसे सजाए थे, तीन प्रकार सजाए थे। एक गेट बनाए थे, कपड़े का गेट बनाए, एक दरवाजा बनाया, एक इनका सुंदर पुष्पों का दरवाजा बनाया, और एक गेट बनाया था कि आम के पत्तों के द्वारा गेट बनाया था। ये वैदिक सभ्यता है कि जब भी आप कोई दरवाजा बनाते हो उत्सव के समय में, तीन दरवाजा होना चाहिए, एक है पुष्पों के द्वारा, एक कपड़े के द्वारा, दूसरा है, तीसरा है आम के पत्ते के द्वारा। आम का पत्ता जो है बहुत शुभ माना जाता है, आम का पत्ता के द्वारा ही डेकोरेशन होता है। साउथ में आप जाएंगे मंदिरों में आम का पत्ता के द्वारा और केले के झाड़ के द्वारा डेकोरेशन होता है। ये सब आस्तर वास्तर कहते आते नहीं, सब चीजें ये सब वैदिक चीज नहीं है, विदेशी फूल है। ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि तीन दिन भी लगाओ उसे सड़ता नहीं है। जो चीज सड़ता नहीं है वो स्वाभाविक नहीं है, समझना चाहिए। हाँ, जैसे आपको घर में आटा मिलता है खरीद के आते बाजार से, आप छह महीना उसके पैक रहते, छह महीने तक कोई सड़ेगा नहीं, या एक साल तक कुछ रहता है, इसका मतलब उसको गड़बड़ है। 20 दिन में अगर आटा पिसतेगा, 20 दिन के उसके अंदर बदबू आना शुरू होता है, तो वो सही आटा है, ठीक है ना। हम कहते आप रोज पीस के, या तीन चार दिन के लिए एक बार पीस के रखते थे, ऐसे थोड़ी नहीं छह महीने के लिए कोई आटा पीस के रखता, गेहूं रखते थे, ठीक है। तो एक बार आटे को, गेहूं को आटा बना दिया, 20 दिन में उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो ये सब हम बोलते हैं समृद्धि है, ये अस्तित्व में समृद्धि नहीं है, ये सब पागलपंथी, इट इज जस्ट बिजनेस। तो एकदम बिल्कुल, द कोर्ट यार्ड द गेट्स नियर द रोड्स एंड एवरीथिंग विद इन द रूम्स ऑफ द हाउसेस वर परफेक्टली स्वेप्ट एंड वॉश्ड विद वाटर। हर जगह वो लोगों ने क्या किया, अपने अपने घरों को अच्छी तरीके से उन्होंने धोया और झाड़ू मारा, धोया। और ऐसा नहीं कि केवल नंदोत्सव नंद महाराज मना रहे थे, पूरा गोकुल मना रहा था। एवरी हाउस एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग, सब लोग मना रहे थे। ऐसा नहीं कृष्ण का जन्म जो है केवल नंद महाराज ने मनाया, नाम लिखा है नंदोत्सव, लेकिन पूरा गोकुल में सभी लोग कृष्ण का जन्म मना रहे थे। ऐसा नहीं कि नंद महाराज का घर ही साफ था, बाकी सब लोगों का घर कोई उत्सव नहीं था। ये अस्तित्व उत्सव मनाने का तरीका है। भले ही कि हम लोग इधर देखते हैं कि जन्माष्टमी मनाते थे, खाली मंदिर सजता है, प्लास्टिक बलून तो था नहीं वो टाइम में। ये प्लास्टिक बलून सब वैदिक चीज नहीं है, इन्हें लगा देते चलो सस्ते में मिलता है, लेकिन कहाँ समृद्धि। हम हमेशा सोचते हैं सस्ते मिलता है, चलो सस्ते में डेकोरेशन हो जाएगा, अस्तित्व में समृद्धि नहीं है। समृद्धि क्या है, लेके आओ सुगंधित पुष्प, लेके आओ एक पुष्प लेके आओ, चलो इतने हजारों रुपए खर्च करके एक गुलाब लेके आओ जहां से सुगंध निकलता हो, एक ऐसा पुष्प लेके आओ जिसके अंदर से इसका स्वाभाविक खुशबू निकलता हो, मिलता नहीं। कहां समृद्धि कहां है। ठीक है, आज आप मुझे 50,000 लेके जाओ बॉम्बे में, मुझे ऐसा एक फूल लेके आओ जिसके अंदर से उसका स्वाभाविक खुशबू मिलता है। इसका मतलब क्या है, भले ही हम इतना सारा लाखों का खर्चा किया लेकिन असली चीज नहीं दिया, इसका मतलब क्या, गरीबी है अभी भी। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी समृद्धि नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका कारण यह है कि हमारा जो आधार है, हमारा जो भौतिक जीवन का जो आधार क्या है, गाय और कृषि और गोरक्षा, कि ये सब का कारण क्या है, वैश्य जाति उसका कारण है। क्योंकि ये पूरा समाज का समृद्धि को संभाल के रखने वाले हैं वैश्य। समृद्धि केवल वैश्यों के पास होना चाहिए, ब्राह्मणों के पास धन नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों के पास धन होगा या उसका बुद्धि दुष्ट होगा या धन को गलत जगह इस्तेमाल कर देगा, वो उसको कोई चीटिंग कर देगा। अगर किसी ब्राह्मण के पास मान लो 1,00,000 रुपए दिए, तो या उसका बुद्धि भ्रष्ट होगा या क्या होगा उसका, या वो ऐसा कोई उल्लू बना के उसको कोई चीज खरीद उसको बेच देगा और पूरा 1,00,000 रुपए लेके जाएगा। जो 5000 का चीज है उसका लाख रुपए लेके चला जाएगा, या उसके हाथ से खो जाएगा, या उसको उसके पास रहने की वजह से उनके मन में चिंता हो जाती है, वो चिंता की वजह से शास्त्र का अध्ययन नहीं कर पाएगा, शास्त्र का अध्ययन नहीं कर पाएगा, उसका ब्राह्मणत्व निकल जाएगा। इसलिए ब्राह्मण की शोभा है गरीबी, जो समृद्ध ब्राह्मण है उसका ब्राह्मण नाश हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का संपत्ति क्या है, ब्राह्मण का संपत्ति है शास्त्र का अध्ययन और वैदिक ज्ञान, उनका जो ऑस्टेरिटी है, तपस्या है, ये ब्राह्मण का उनका गुण ही उनका संपत्ति है। अगर भौतिक संपत्ति उसके पास है वो संभाल नहीं पाएगा, और संभाल भी लिया तो गलत, उसका प्रदूषण हो जाएगा, लोभ आ जाएगा। इसलिए गरीबी ब्राह्मण की संपत्ति है। ब्राह्मण शुड बी ऑलवेज पोअर। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि अरे मैं अमीर ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण नहीं है। ही शुड नेवर बी हैविंग ऑपुलेंस ब्राह्मणस। और क्षत्रियों का कार्य क्या है, क्षत्रियों का कार्य है कि ये वैश्यों के अंदर जो लोभ है उसको नियंत्रित करना। वैश्यों का जो लोभ है उसको पूरा निकाल नहीं सकते, क्योंकि उनका स्वभाव है, लोभी होना उनका स्वभाव है। उनको पास एक रुपया है तो उसको 10 कैसे बनाओ ऐसा सोचेंगे, और 10 है तो 1000 कैसे बनाओ सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे एक का दो बनाना है। एक का दो तो दूसरी बात है, एक का 10, और 10 बनने के बाद भी ऐसा सोचेंगे बहुत कम हुआ ये वैश्य का स्वभाव है। लेकिन अगर उसको वैश्य को ऐसे छोड़ दिया जाए, पूरा पूरा क्या करेंगे, पूरा पृथ्वी को खा जाएंगे वो एवरीथिंग, और फिर भी बोलेंगे मेरे पास कुछ भी नहीं है। इट इज द नेचर ऑफ वैश्य, तमोगुण की वजह से लोभ रहता है। तो ये लोभ को नियंत्रण करना ये अति आवश्यक है। वो कैसे नियंत्रण होगा, रजोगुण के द्वारा नियंत्रण होगा। जिसके क्षत्रिय अपना डंडा लेके बैठते हैं वैश्य के सर के ऊपर, अगर थोड़ा सा लोभ की मात्रा थोड़ा ज्यादा हो गई, उसकी वजह से समाज में तकलीफ आ रहा है, समाज में कुछ अस्त व्यस्तता हो रही है लोभ की वजह से, वैश्य की लोभ की वजह से, तब क्षत्रिय उसको डंडा मारेंगे। तो ये समाज का व्यवस्था है, वर्णाश्रम समाज का व्यवस्था है। इसलिए क्षत्रिय जो है वो उनके पास भी खुद अपना संपत्ति नहीं रहता है, जो वैश्यों से उत्पन्न हुआ जो या कर वसूल करते हैं, उनका लोभ करते हैं, उसको संरक्षण करने के लिए जो सरकार या जो संपत्ति सरकार देता है उसके अनुसार उनको जीना चाहिए। इसलिए क्षत्रियों का भी अपना संपत्ति नहीं होता है। ही डजंट हैव एनी मेरा खुद का जमीन है, ऐसा कुछ नहीं रहता उनके पास। वो उनके पास सत्ता रहती है, वो सत्ता की वजह से वो अपना जो सरकार है या राजा है, राजा जो इनाम के रूप में देते हैं तो उससे अपना जीवन यापन करते हैं क्षत्रिय। ये खुद की संपत्ति ब्राह्मणों का भी नहीं रहता है, क्षत्रियों का भी नहीं रहता है। और ये जो संपत्ति है, समृद्धि जो है, केवल वैश्यों के पास रहता है, क्योंकि उनके पास वो कुशलता है। क्या कुशलता है, उसको संभालने की कुशलता है। अगर वैश्यों के हाथ में अगर आप 10 रुपए दोगे तो वो 20 रुपए का सामान खरीद के लाएगा, अगर आप ब्राह्मण के हाथ में 10 रुपए दोगे वो 1 रुपए का सामान लेके आएगा। ये उनका स्वभाव है, क्योंकि उनके पास ऐसी चतुराई रहती है, क्योंकि 24 घंटा पैसे के बारे में सोचते हैं। तो उनका इट इज बाई नेचर, वो सोचते हुए भी अगर मान लो कि भक्ति में लगे हुए, वो भक्ति में उनका असर नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई वैश्य है और उनका आप 1,00,000 रुपए देंगे, आप बाजार से सामान लेके आओ, तो उसका जब भी चलता रहेगा, ये भी साथ में रहेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण को आप खाली 100 रुपए दे दो और बोलो कुछ जामा सब आप जाके सामान लेके आओ, तो क्या होगा, वो ना 100 रुपए संभाल पाएगा ना वो जब कर पाएगा। क्योंकि वैश्यों का जो साइकोलॉजी है वो बना हुआ ऐसा है, क्योंकि तमोगुण होने की वजह से, तमोगुण का प्रभाव की वजह से, तो अपना ये जो धन का धन की संचय की वजह से उत्पन्न हुआ जो चिंता है, वो चिंता भी प्रभावित नहीं करता है। दैट एंग्जायटी डजंट अफेक्ट देयर कॉन्शियसनेस। तो इसलिए धन को संभालने का जिम्मेदारी है वो किसका है, वैश्य का है। तो बाद में शूद्र के पास अगर 1 रुपया भी देंगे, मैं अपने 10th स्टैंडर्ड दे देखा, हमारे घर में गांव में काम करने वालों को 1 पैसा नहीं दिया जाता, उनको लेबर को 1 पैसा नहीं दिया जाता। जो आके पूरा घर का काम करते थे, पूरा बगीचा सब गाय बैल सबको देखभाल करते थे, और उनको जो घर में बचा हुआ खाना वो दे देते थे, और उनको जो भी साल में एक बार कुछ जब धान निकलता है, धान या चावल का कुछ कुछ जो चीजें वो दे देते, क्योंकि उसके हाथ में अगर पैसा दोगे शूद्र के हाथ में, वो निश्चित रूप में वो इंद्र तृप्ति करेगा, वो इंद्र तृप्ति व्यभिचार करेगा, दारू पिएगा, नशा करेगा। इसलिए आप पैसा नहीं देते। जैसे बच्चे के हाथ में अगर पैसा देंगे तो क्या होगा, वो कुछ गलत कार्य करेगा, वो कुछ अपने आप को हानिकारक करने वाला कार्य करेगा। इसे शूद्रों को पैसा नहीं दिया जाता। तो ये वर्णाश्रम सम की व्यवस्था है। अभी आप लेबर को बुलाएंगे, जैसे कोई शूद्र का प्रवृत्ति वाला है, वो दिन भर पंडाल में काम करेगा, वो सब कुछ करेगा, हंगामा करेगा, उसके हाथ में मेरा आज का पगार दे दो, आज का जो हाजिरी का पैसा दे दो, 500 रुपए दो, वो 300, 350, 400 रुपए पूरा पी गए। कुछ लोग तो पूरा पी लेंगे, इतना ज्यादा पी लेंगे जितना कम है उससे ज्यादा पी लेंगे। इसलिए उनके हाथ में पैसा नहीं दिया जाता। अगर पैसा उनको मालूम था कि वर्णाश्रम समाज के अनुसार शूद्रों के हाथ में अगर पैसा देंगे वो निश्चित रूप में वो गलत कार्य में, व्यभिचार में या नशा में या जुआ में, इसमें गवा देंगे। तो अभी देखते हैं कि जितने भी ये जुआ खाना है, दारू खाना है, सब चीजें क्यों खुल रहा है, क्योंकि वैश्यों को पैसा दिया जा रहा है। दे आर गिवन मनी। पहले एक डंडा लेके उनको काम कराया जाता है, जो मिला तुम्हारा जीने के लिए जो जरूरी है वो सब दिया जाता था। उनको समृद्धि इस प्रकार थी कि जो भी जरूरत था उनके घर के लिए घर दिया जाता था, उनको खाने के लिए कुछ दिया जाता, लेकिन आके दिन भर काम करो, बस यही है। तो ये जो नौकरी सिस्टम जो है वो शूद्रों का प्रवृत्ति है। इट इज शूद्र का समाज को वृद्धि करने वाली नौकरी। नौकरी मतलब क्या है, शूद्र। तो इस प्रकार वर्णाश्रम समाज स्थापना किया गया है। देखिए वर्णाश्रम समाज में अभी वैश्यों की चर्चा हो रही है। वैश्यों का जिम्मेदारी भगवान कहते हैं कृषि गोरक्षा वाणिज्य। कृषि गोरक्षा वाणिज्य क्षत्रिय का वैश्य कर्म स्वभाव, वैश्यों का स्वभाव है। ये आश्चर्य की बात है। अब देखेंगे, थोड़ा सा गौर से देखेंगे, भगवान ने ये चार वर्ण और चार आश्रमों के विषय में उन्होंने भगवद गीता का 17वें अध्याय में उन्होंने कहा, 8वें अध्याय में कहा। तो ये चार वर्ण के विषय में कहते हुए सबसे पहले उन्होंने कहा ब्राह्मणों के गुण। तो ब्राह्मणों के बारे में कहते हुए ने कहा समोदम तपस्वचम शांतिर आर्जम एवच। अभी देखिए ब्राह्मणों के विषय में वर्णन करते हुए कृष्ण ने क्या कहा भगवदगीता में, कुछ क्रिया को वर्णन नहीं किया, ने क्या वर्णन किया, गुणों को वर्णन किया, है कि नहीं। क्या है समो दम तप सौचम शांतिर आर्जवम, ये सब क्या है, गुण है। ये कोई क्रिया को वर्णन नहीं किया। बाद में जब क्षत्रियों को वर्णन किया तो उन्होंने क्या वर्णन किया, सौर्यम तेजो द्विती दाक्षम चापलायनम। ये जो एक क्षत्रिय का गुण है कि नहीं, ये क्षत्रियों का गुणों को वर्णन किया भगवान ने। अभी जब वैश्य का वर्णन हुआ तो क्या वर्णन किया, क्या वर्णन किया, कृषि गोरक्षा वाणिज्य, क्रिया को वर्णन किया। क्यों, क्योंकि गुण हो तभी बताएंगे ना, आप काम करो, बस जस्ट डू वर्क। क्योंकि लोभ इतना है तो गुण कहां से आएगा, गुण जो है वो केवल ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में देखा है, वैश्यों में गुण नहीं देखता है। उनको एक ही चीज दिया जाता है, वो क्या है, वो है समृद्धि दिया जाता है। तो वैश्य समृद्ध होना चाहिए। अगर वैश्य समृद्ध नहीं है तो वो ना वैश्य ना ब्राह्मण ना क्षत्रिय कुछ भी नहीं है, इज डेंजरस टू सोसाइटी। इसलिए बिजनेसमैन व्यापारी हमेशा समृद्ध होना चाहिए। और ये समृद्धि कैसे आएगी, ये पूरा आजकल की जितने भी इकोनॉमिक पोजिशन है, आजकल समाज का इकोनॉमिक पोजिशन बोलते हैं डॉलर बढ़ रहा है, हो रहा है, पूरा हंगामा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब वैश्यों का बुद्धिहीनता की वजह से हुई। तो कृषि गोरक्षा को छोड़ दिया, केवल वाणिज्य करने लगे। अभी वैश्य का मतलब क्या है, मैं अभी बिजनेस करता हूं, वो ये नहीं बोलेगा मैं कृषि करता हूं, ये नहीं बताएगा कि मैं गोरक्षा कर रहा हूं, गाय को देखभाल कर रहा हूं। जब वैश्यों ने गोरक्षा और कृषि को त्याग कर दिया और केवल वाणिज्य करने, क्योंकि बैठे बैठे पैसे मिलता है, फोन लगाया, अच्छा इससे 10 रुपए का माल लिया, उसको 15 रुपए में बेचा, तो ये करते करते पूरा समाज की अस्थिरता हो गई। क्योंकि ये करने की वजह से आप देखिए कि ऐसा ऑब्जर्वेशन भी है ये प्रकृति के उनके स्वभाव के नियम के विरुद्ध जाने की वजह से, कृषि और गोरक्षा को त्याग करके केवल वाणिज्य करने की वजह से, उनका जिम्मेदारी को नहीं अपनाने की वजह से उनको बहुत बहुत पाप लगता है और पापों का फल को भूना पड़ता है। जैसा अभी तो दिखाई नहीं पड़ता कौन वैश्य क्या शूद्र, बॉम्बे में सब बोम्बैया है, वो ना शूद्र है ना कुछ है कुछ कोई वर्ण का है, बोम्बैया हो गया। लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ था हमारे गांव में जो वर्णाश्रम की सब बचा हुआ था, जो वैश्य परिवार होता है जिस जो कृषि नहीं करते गोरक्षा नहीं करते केवल वाणिज्य करते हैं, तो वैसे परिवार में कि उनका बच्चा विकलांग रहेगा, कोई ना कोई कुछ गड़बड़ रहेगा, कोई ना कुछ गड़बड़ रहेगा, या उनके परिवार में कुछ तनाव रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा परिस्थिति रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ये वर्णाश्रम धर्म की जिम्मेदारी जो है वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वैश्य जब गोरक्षा और गोरक्षा और कृषि नहीं करता है तो क्या होगा, वो केवल वाणिज्य करता रहेगा। वाणिज्य तभी होगा जब गोरक्षा और कृषि जब उत्पत्ति होगा तभी तो वाणिज्य रहेगा, ये मूर्खता है। मान लो कोई फैक्ट्री हो, प्रोडक्शन होगा तभी तो मार्केटिंग होगा, है कि नहीं? तो अंततः कि पृथ्वी से जब तक कोई उगाए नहीं उसके ऊपर वाणिज्य कैसे हो सकता है, उसके ऊपर ट्रेडिंग कैसे हो सकता है? तो सब लोग ट्रेडिंग में जाना चाहता है, कोई प्रोडक्शन में जाना नहीं चाहता है। तो ये बड़ा दुख की बात है। तो लेकिन नंद महाराज कृषि गोरक्षा वाणिज्य, क्योंकि वैश्य जिससे धन मिलता है उनके लिए वो भगवान है, ये स्वभाव है वैश्य का स्वभाव है, जिससे धन मिलता है उनके लिए भगवान। तो वैश्यों को मालूम था कि गाय और ये जमीन खेती जो है, खासकर गाय जो है वो उससे ही हमको धन मिलता है, इसलिए गाय हमारे लिए भगवान है। तो इसलिए सारे वैश्य क्या करने लगे, गाय को जिस प्रकार भगवान को सजाते हैं, भगवान को देखभाल करते हैं, पूजा करते हैं, उसी प्रकार किया। श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है कि आश्चर्य की बात तो छोड़िए, हमारी कल्पना से परे है, गाय और बैलों को और बछड़ों को इस प्रकार सजाया जा रहा है। स्वर्ण सोने की आभूषण से ये सजाया जा रहा है और बहुत सुंदर सुंदर ये वैढूर्य वज्र है उनके द्वारा सजाया जा रहा है, मोर पंख और सुंदर कपड़े डाला जा रहा है। लेकिन आजकल का समाज इतना ये हो गया है, वो कुत्ते को डालते हैं। मैंने पहली बार देखा जब रास्ते का जा रहा था कि सुबह सुबह कोई कुत्ते को लेके जा रहा था, ये क्या है, क्या विचित्र है। तो थोड़ा सा गाड़ी नजदीक में गया तो मैंने देखा वो कुत्ते को टी शर्ट पहनाया है। तो मैंने ड्राइवर से पूछा, क्या कुत्ते को भी ड्रेस मिलता है क्या, ऐसे पहनाया आदमी का शर्ट? नहीं नहीं, उसका माप लेता है, उसका टेलर है, वो तो उसका जूता भी बनता है उसका जूता बनता है। तो प्रभुपाद ने कहा इट इज डॉग सिविलाइजेशन, मैंने नया चीज नहीं कहा। कुत्ते का बिस्किट जो है आदमी का बिस्किट से महंगा है, कुत्ते का शैंपू जो है आदमी का शैंपू से महंगा, इज डॉग सिविलाइजेशन। तो इधर हम देख सकते हैं कि हम कल्पना भी नहीं सकते थे गाय और बैल और बछड़ों को कैसे सजाया गया था, सोने की मुद्राओं से सजाया गया था, सोने सोने की आभूषणों के द्वारा सजाया गया था और उनका सुंदर वस्त्र पहनाया गया था। वी कैनॉट इवन इमेजिन, ये सोच भी नहीं सकते। इवन अभी भी हम गौशाला करते हैं, गौशाला में जब जाएंगे हम ये भी सोच भी नहीं सकते कि गाय से अत्यंत प्रेम करने वाला भी सोच नहीं सकता कि गाय के गाले में मैं सोने की माला चढ़ाऊं। पहले उसके पास तो होना चाहिए चढ़ाने के लिए, लेकिन मान लो आ भी गया तो अपनी पत्नी को देगा, अपने बच्चे को देगा, लेकिन गाय को नहीं देगा। विल नॉट गिव, गाय से अत्यंत प्रेम करने वाले भी नहीं कर सकते। अभी देखिए एक गो भक्त है, आजकल का गो भक्त है, तो वो पहले की साधारण व्यक्ति के पास जितना गो भक्ति थी उसका रंच मात्री आजकल के गो भक्ति के पास नहीं है। तो और दूसरी क्या कहना, यू डोंट नो, ये उस समय का समाज था। गायों को इस प्रकार देखभाल करते, जैसे ऐसा नहीं कि बच्चे जैसे माँ जैसे भगवान, क्योंकि वैश्यों मैंने कहा जो जैसे एक ब्राह्मण को शास्त्र अध्ययन का रुचि रहता है तो जो गुरु उनको शास्त्र पढ़ाता है वो उनके लिए भगवान है। क्षत्रियों को क्या है, जो व्यक्ति उनको राज्य देता है, शक्ति देता है, जो व्यक्ति उनको प्रशंसा देता है वो उनके लिए गुरु है, ये वो उनके लिए भगवान है। वैश्यों को क्या है, जो जिस व्यक्ति से धन मिलता है वो उनके लिए भगवान है। तो पहले जमाने में लोगों को मालूम था कि गाय जो है वो सारे समृद्धि का स्रोत है। तो वैश्य इतना देखभाल करते, मोर पंख की माला चढ़ाए तो मोर पंख केवल कृष्ण धारण करते हैं। इधर दिखा कि भगवान गाय को मोर पंख चढ़ा देती है कि आप ही हमारे लिए कृष्ण, यू आर कृष्ण फॉर अस। एक विग्रह के रूप में गायों को देखभाल किए। विग्रह को क्या होता है, जब सुगंधित तेल के द्वारा मालिश होता है और अभिषेक होता है, वैसे सारे गायों को किए, बैल को किए, बछड़ों को किए। तो ये नंद महाराज किस प्रकार नंदोत्सव मनाए। नंदोत्सव ऐसा नहीं कुछ दही लेके एक दूसरे को फेंका और कुछ नंदोत्सव कर दिया, ये नंदोत्सव नहीं है। गाय को लेकर गाय को इस प्रकार सजाओ, ये नंदोत्सव है। वो जैसे नाचेंगे और एक दूसरे को दही, वो भी क्या कौन सा पता नहीं जर्सी का दही होगा, पता नहीं क्या बैर वो भी शुद्ध दही तो मिलता नहीं है। नंद के घर क्या आनंद भयो, ऐसा करके कुछ एक दूसरे को कुछ फेंकते हैं, कुछ वृंदावन में ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन वॉट इज दिस, इसलिए गाय का रक्षा करना वैश्यों का प्रथम कर्तव्य है। जहां गाय की रक्षा होती है स्वाभाविक तरीके से समृद्धि अपने आप होती है। जिस मंदिर में, जिस जगह, कहीं भी हो, जहां गाय की देखभाल होती है उधर समृद्धि अपने आप स्वाभाविक तरीके से होती है। तो अभी मैंने शुरुआत में कहा था कि आजकल की समृद्धि और वैदिक समृद्धि में अंतर क्या है। तो आजकल किसी के अमीर व्यक्ति के घर में भी जाएंगे, आपको खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, पेपर प्लेट में खिलाएंगे। मुझे मालूम है, हम गांव में बचपन में किसी घर में भी जाते थे, कोई अन्य व्यक्ति के वैश्यों के घर में जाते, किसी ब्राह्मणों के घर में भी जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो वो सोने का प्लेट नहीं तो कम से कम चांदी का जो प्लेट है उसमें ही खिलाते थे। और चांदी का जो प्लेट है उसके बीच में सोने का एक छोटा सा ये रहेगा, मिनिमम वो चीज रहेगा, वो किसी को भी इसी में खिलाते थे। लेकिन आजकल जितने भी समृद्ध लोगों के घर में भी जाएंगे आपको पेपर प्लेट में मिलेगा। समृद्धि कहाँ है बताओ, वेर इज समृद्धि, वेर इज प्रॉस्पेरिटी। हम कहते हैं कि इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया, इतना ही बन गया, एयर कंडीशन है, मेरे पास 1 करोड़ का गाड़ी है, 3 करोड़ का गाड़ी है, अभी इकोनॉमिक पोजीशन बढ़ गया है, इकोनॉमी बढ़ रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको एक स्वच्छ फल क्यों नहीं मिलता है, फूल नहीं मिलता है, क्यों? Why you are not getting it? कहाँ है समृद्धि? Where is? ठीक है, समृद्ध व्यक्ति क्या करता है बताइए? समृद्ध व्यक्ति बिना काम किए भी जी सकता है कि नहीं? वो समृद्धि का लक्षण है। उनको कुछ प्राप्त करने के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ रहा, यही समृद्धि का लक्षण है। लेकिन आप देखो कि आजकल लोग अपने आप को जो समृद्ध मानते हैं वो सुबह 7 बजे निकलते, 10 बजे आते हैं, 7 बजे निकलते हैं और 10 बजे आते हैं। और उसके पास जाके पूछिए हर महीना वो कितना लोन भरता है। यानी वो जितना समृद्ध अपने आप को सोचता है वो उतना पानी में डूबा हुआ है। ये आधुनिक सभ्यता का आधुनिक ये जो वाणिज्य का प्रभाव है, वो सोचता है कि मेरे पास इतना करोड़ का पैसा है, इतना ये है, इतना फ्लैट, लेकिन वो सब केवल काल्पनिक है। अगर कोई भिखारी बैठ के सोचे मेरे पास 500 करोड़ रुपए है, भिखारी सोचे कि मेरे बहुत पुलिस दिखाओ, बैंक में पड़ा है। नहीं, वो बैंक क्या है, वो मैंने शेयर में लगा के रखा है। तो ये क्या है समृद्धि? मान लो कि अगर वो कल्पना है, इट इज जस्ट इल्यूजन, देयर इज नो रियलिटी। जैसे ये जो बैंकिंग सिस्टम है, नोट है, पहले जमाने में क्या होता था, कोई चावल उगाता था, कोई दाल उगाता था, वो दाल लेता था, चावल देते थे। यानी कुछ रियल एक्सचेंज होता था। रियल एक्सचेंज मतलब क्या है कि आप कुछ चीज, असली चीज दे रहे हो, आपको असली चीज मिल रहा है। लेकिन ये नोट क्या है आपको? नोट क्या है? वो नकली चीज है। नोट के ऊपर लिखा है आई प्रॉमिस द बेरर, 1 रुपए का नोट छोड़ के बाकी जितने भी नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं छापती है। कौन छापता है मालूम है? रिजर्व बैंक छापता है। इट इज एस्टैब्लिश विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नर, रिजर्व बैंक का गवर्नर, आई प्रॉमिस द वेरर टू पे द सम ऑफ 100 रुपीज, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या है कि अगर आप 100 रुपए का नोट जाके रिजर्व बैंक में देंगे, वो 100 रुपए जितना मूल्य है उतना सोना आपको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आप लेके जाओ, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये तो रुपए की बात है, कम से कम वो इतना कहते हैं कि इतना सोना है तो इतना रुपए छापेंगे, लेकिन डॉलर का बात देखिए, यह पूरा विश्व डॉलर के ऊपर आधारित है कि नहीं। अगर आपको कोई देश से कोई चीज खरीदना है तो आप रुपए में नहीं खरीद सकते, उनका देश का मूल्य के अनुसार नहीं खरीद सकते हो, डॉलर के ऊपर आधारित होकर खरीद सकते हो। यू कैन ओनली बाय कॉइन डॉलर, दैट इज ए इंटरनेशनल, ये हो गया क्योंकि अमेरिका बहुत पावरफुल इकोनॉमिकली। लेकिन जो सबसे शक्तिशाली चीज जिसको माना जाता है इकोनॉमिकली हर चीज में, वो जब डॉलर प्रिंट करते हैं वो सोने के ऊपर आधारित होकर प्रिंट नहीं करते, केवल विश्वास के ऊपर आधारित होकर प्रिंट करते हैं। इट इज ओनली प्रिंटेड बेस्ड ऑन योर ट्रस्ट। तो डॉलर के ऊपर ऐसा नहीं लिखता आई प्रॉमिस द बेरर, ऐसा लिखा नहीं गया। आप देखिए खाली क्या लिखते हैं, इन गॉड वी ट्रस्ट। आपने देखा होगा डॉलर का नोट, देखा है कि नहीं, उसके ऊपर ही लिखा हो इन गॉड वी ट्रस्ट। एक झापड़ मार के पूछो हु इज दैट गॉड, आई डोंट नो, हमको नहीं मालूम इन गॉड वी ट्रस्ट, लेकिन वो कौन है मालूम नहीं, पूछा नहीं, नहीं, नहीं वो कोई है ही नहीं, कुछ लोग बोलेंगे है ही नहीं। तो ऐसा कैसे है कि आप उस व्यक्ति को विश्वास करते हो जो है ही नहीं। आप देखिए कि पूरा विश्व में इसी के पर है, डॉलर इज, इट इज कॉल्ड ए डॉलर, उसको डॉलर नोट नहीं बोलते, उसको डॉलर बिल बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ए डॉलर बिल। तो ये जो डॉलर बिल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक देश अरब कंट्री से कोई कहीं से दुबई से आपने एक $1,000 का कुछ चीज खरीदा, आपके पास $1,000 नहीं है, तो अमेरिका क्या करेगी, वो $1,000 उनको देगी, यानी आप चिंता मत करो भारत आपको दे देगा, भारत आपको दे देगा। तो खाली एक आश्वासन पत्र मात्र है डॉलर, यानी कितना मिथ्या है देखिए इसमें, हाउ मच इल्यूजन इज देयर इन दिस। आप जिसको पैसा करके काउंट करते हो, वैसे तो शास्त्र में कहा गया है धन संपत्ति जो है वो सब क्या है, एक एक मिथ्या है, वो सत्य नहीं, कुछ समय के बाद जाने वाला है, इट इज इल्यूजन, एक भ्रम मात्र है। लेकिन आजकल हमारी ऐसी परिस्थिति है, भ्रम में भी भ्रम है, इल्यूजन विद इन इल्यूजन। तो ऐसी परिस्थिति क्यों, क्योंकि ये वैश्यों की वजह से, क्योंकि वो गोरक्षा नहीं करते, गायों को भगवान के रूप में देखभाल करना चाहिए। वैसे गो माता बोलते हैं, लेकिन माता तो ठीक है, माता उनको माता करके समझना वो तो एक बात है, लेकिन ये समझना चाहिए कि वो कौन है, गाय इज एक्चुअली योर गॉड, बिकॉज दैट गिव्स यू ऑल द नेसेसिटीज, जो चाहिए सब कुछ प्रदान कर सकती है आपको, आध्यात्मिक भौतिक मानसिक हर प्रकार की जो भी समृद्धि चाहिए सब कुछ दे सकती है। कुछ दिन पहले किसी ने कहा ये गौशाला में बहुत खर्चा होता है, बहुत महंगा पड़ता है, सब नुकसान है। तो क्यों नुकसान है, क्यों नुकसान, इसलिए क्योंकि गाय का जो वास्तविक उपयोग है हम नहीं जानते। हम सोचते हैं कि गाय केवल दूध देती है, अगर कोई सोचे माँ दूध देती है, ये क्या है, मूर्खता है कि नहीं, माँ दूध देती, कोई बोलता है, नोबडी सेज माँ दूध देती है, तो गाय दूध नहीं देती, माँ क्या करती है, पूरा बच्चे को पालन करती है कि नहीं। तो वैसे ही गाय हमको पालन करती है, आप कोई छोटे छोटे बच्चों को टेक्स्ट बुक रहता है ना, लिखा रहता है गाय दूध देती है, तो इसी से अज्ञान शुरू हो जाता है। ऐसा उसको सिखाना चाहिए गाय हमारी माता है, वो निकल गया। मैं स्वयं इस बात को ऑब्जर्व किया है, जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में दाखिला हुआ था, उधर एक हमारा जो तेलुगु का टेक्स्ट बुक था, हिंदी का भी टेक्स्ट बुक था और इंग्लिश का भी टेक्स्ट बुक था, उधर लिखा है तेलुगु टेक्स्ट बुक और हिंदी टेक्स्ट बुक में लिखा था वो टाइम में, गाय हमारी माता है, और इंग्लिश का वो जो बुक है वो खोल के देखिए, उसके अंदर काउ यूजेस मिल्क। तो जो व्यक्ति सोचता है गाय केवल दूध के लिए है, वो व्यक्ति जो है उधर से उस प्रकार के विचार से गोहत्या शुरू होता है। जो व्यक्ति सोचता है गाय मां दूध देती है, तो जैसे मां दूध देना बंद कर दिया तो फाड़ दो, खत्म करो। तो अगर गोरक्षा करना है सच में, हमारा ये जो मूल विचारधारा है, क्या विचारधारा, जो गलत विचारधारा क्या है, गाय दूध देती है, गाय केवल दूध के लिए, ये विचारधारा को बदली करना होगा। गाय गोबर देती है, गाय गोमूत्र देती है, ये बोलो, तब तब कुछ समृद्धि रहेगी कुछ हद तक। गोबर को गोबर क्यों बोला गया, कि गाय से निकली हुई जितने भी चीजें हैं उनमें से श्रेष्ठ है गोवर, वर मतलब श्रेष्ठ। सो गाय से उत्पन्न हुए अनेकों चीजों में श्रेष्ठ चीज क्या है, गोबर। वो घर में लगाते थे क्योंकि उनको मालूम था ये श्रेष्ठ है, गोबर श्रेष्ठ है। दूध कभी कभी व्यक्ति को नुकसान कर सकता है, लेकिन गोमूत्र और गोबर कभी किसी को नुकसान नहीं करेगा। खास करके जो बारिश के मौसम में हम देखते हैं कि व्रज में भी लोगों, कृष्णमुख में भी आता है, भागवतम में भी आता है, ये गायों को दूसरों को दे देते, आप जाओ जंगल में जाके उनको चराओ, उधर से जो दूध मिलता था, दही मिलता था, वो लोग खाते थे। लेकिन जो समृद्ध लोग हैं वो खास करके बारिश के मौसम में गाय के पट नहीं करते, क्योंकि वात बढ़ जाता है दूध के। लेकिन गोबर और गोमूत्र जो है वो श्रेष्ठ है, गाय से उत्पन्न प्रोडक्ट में सबसे श्रेष्ठ चीज है। अब उसको त्याग कर दिया हमने, घरों में मार्बल लगाना शुरू किया, वो कराना शुरू किया, गोबर जो है गंदा चीज है, ऐसा सोचना शुरू किया। सो दिस द थिंग। हाँ, हमको मालूम था कि जब हमारे गांव में भले ही रिनोवेशन हुआ, फ्लोर बनाया, ये सब कुछ किया, कितना भी कुछ किया, लेकिन पाकशाला जहाँ बनता है, खाना बनता है और जहाँ बैठ के खाते हैं, ये जो है उसके उसको अंदर फ्लोरिंग नहीं किया गया था, इट नॉट डू फ्लोरिंग। क्योंकि अगर फ्लोरिंग हो गया मतलब गंदगी आ गया, शुद्ध नहीं हो सकता, यू कैन नॉट प्योरीफाई। गाय का गोबर से शुद्ध हो सकता है, आपने कहीं अच्छा सा मार्बल लगा के घर में मार्बल लगा दिया, उसके गोबर कैसे लगाएंगे आप, यू कैन नॉट डू दैट। घर में तो ये दो जगह जो है उसको बोला कि इसको फ्लोरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार फ्लोरिंग हो गया तो शुद्ध नहीं हो सकता, कैसे शुद्ध होगा। तो वैसे लोगों का विचार था, ये नई बात नहीं, एक बात 15-20-25 साल पहले की बात है। अगर ऐसा है तो अब देखिए कितने जमाने पहले लोग कैसे कैसे लोग। तो गाय अति महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में दोनों। पिछली बार तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहा कि गाय जो है कृष्ण के वो शरीर है, इट इज ए बॉडी ऑफ कृष्ण, कृष्ण इससे प्रेम करते हैं। और अभी भौतिक स्तर में भी अगर देखा जाए, और समृद्धि तभी होगी जब हमारे पास गाय होगी। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं, क्वेश्चन गाय के शरीर में सारे देवता उपस्थित है, 33 कोटि। अभी 33 कोटि है, इसका दो अर्थ है, वास्तविक अर्थ यह है 33 कोटि का एक अर्थ है कि ग्रुप कैटेगरी। गाय के शरीर में 33 कैटेगरी देवता रहते हैं, 33 करोड़ नहीं है, कोटि का अर्थ करोड़ ही नहीं होता है, ये भी सही। अगर कोई बोले 33 करोड़ देवता है, इसका अर्थ यह है कि बहुत सारे है, इसका अर्थ है कि नहीं गिनते 33 करोड़ होते हैं, 33 करोड़ एक हो गया, ऐसा नहीं। 33 करोड़ मतलब क्या है, इतने सारे हैं अनगिनत, आप गिन नहीं सकते हो। और 33 कोटि का अर्थ है 33 कैटेगरी, 33 कैटेगरीज है, उसमें बहुत सारे लेवल्स है, उसमें भी बहुत सारे हैं। तो ये कोटि का अर्थ है कि ये कोटि का है, इसका अर्थ क्या है, ये ग्रुप का है, कैटेगरी का है, या ये समाज का है। ये मूर्ख की कोटियों में आता है, मतलब क्या है, मूर्ख की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे देवताओं के 33 कैटेगरीज है, तो उनमें से 33 इंचार्ज होते हैं, उनका चित्र अगर गाय का शरीर देखेंगे तो आपको मिलेगा। उसका एक बहुत सुंदर टेक्नोलॉजी है, मैं एक्चुअली मैं भूल गया उसको कैसे वर्णन करना है, किस प्रकार सूर्य और चंद्र सिंह के इस पार निवास करते हैं, सूर्य और चंद्र से जो शक्ति स्वीकार करता है गाय, हम्प में कोई रहता है, शिव जी एक जगह रहते हैं, बहुत सारे चीजें हैं और उसका पूरा टेक्नोलॉजी है। क्यों ये देवता इधर क्यों रहते हैं, क्योंकि और लक्ष्मी जी कहाँ रहती है, वो पिछले भाग में रहती है, गोबर में रहती है, शी स्टेज इन गोबर, लक्ष्मी जी गोबर में रहती है, ये है। तो ऐसा बहुत सारे, मुझे वो एग्जैक्टली मैं ध्यान में नहीं बता सकता हूँ।
जर्सी गाय के विषय में सुनते हैं,
हाँ,
सुअर और उसका मिलान करके बनाया,
बराबर,
वो मनुष्य ने बनाया,
बराबर बराबर,
तो फिर मनुष्य ब्रह्मा से भी महान हो गया, 84 लाख की होती है मनुष्य जो है,
बराबर,
तो ब्रह्मा जी ने बनाया, यदि मनुष्य ने बनाया तो फिर
मनुष्य ने कोई नया शरीर नहीं बनाया, जैसे दूध और जहर दोनों ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन दोनों को मिक्स किया किसने, मनुष्य ने। तो मनुष्य की मूर्खता है, बुद्धिमता नहीं है कि प्रकृति के विरुद्ध गया, तो ब्रह्मा जी से बढ़कर हमारा हमारा ऐसी बुद्धि होगी, हम छोटा बड़ा को किस प्रकार मापते हैं, अगर कोई वो विचित्र कार्य करता है, प्रकृति के विरुद्ध कुछ कार्य करता है और अन्य लोग नहीं कर पाते हैं तो उसको हम बड़ा मानते हैं, तो हमारी बड़ा और छोटा का माप ही गलत है। जो प्रकृति के नियम के अनुसार चलता है वो क्या है, वो बुद्धिमान है, वो बड़ा है, प्रकृति के विरुद्ध चलता है वो मूर्ख है, भले ही वो विशेष क्यों ना, विशेष रूप विमूढ़ा ऐसा कहा जा सकता है, उनके पास विशेष बुद्धि है लेकिन मूर्खता है, उनको मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है, जैसे कोई ट्रैफिक रूल है सामने आराम से चल रहा है, सब लोग शांति से चल रहा है, लेकिन ये एक बुद्धिमान बनने के लिए प्रयास करेगा, ये ऐसा करेगा ऐसा करेगा, वो देखेगा कुछ करके करेगा, बाद में क्या होगा, एक्सीडेंट होगा उसका। हाँ, तो कोई बैठेगा बाजू में कार में, आपको बैठे देखो कितना बुद्धिमान है, कितना बड़ा है, व्यवहार बड़ा है, बड़ा नहीं है, इज अ फूल। ये प्रकृति का जो नियम है उसके अनुसार चलने वाला ही बड़ा है। तो हमको हर चीज फास्ट फास्ट नहीं चाहिए, जो है वो चाहिए, वॉट एवर इज द रूल्स वी शुड फॉलो। तो बड़ा और छोटा का माप जो है वो, उसका माप ये है वो कितना प्रकृति के नियमों को पालन कर रहा है, वो उसके ऊपर है। जो प्रकृति के नियम पालन नहीं करता है वो ऐसा बलून के जैसा है, एक बलून में हवा भरो और छोड़ दो, पूरा हंगामा करेगा, बाद में वैसे गिरा पड़ा रहेगा, पूरा हवा निकल गया, बोलते ना हवा निकल गया, यही हवा निकल गया। क्योंकि बात बढ़ जाता है तो उसका माइंड जो है पूरा ऐसा हाइपर हो जाता है। तो यही तकलीफ, तो हवा निकल गया तो शांत हो गया, बैठ जाओ। इवन साधारण सी जो बातें है ना, हवा निकल गया, इसको हवा लग गया, ये भी आयुर्वेद के साथ संबंधित है, एकदम सादा। मान लो कि कोई मोटा बच्चा है, कोई बोलेगा इसको अरे कितना मोटा है, देखो क्या एकदम शक्तिशाली होगा, कोई बोला यार पतला दुबला रहेगा, बोला ये अंदर हवा भरा है, लेकिन है नहीं कुछ, तो आयुर्वेद के साथ संबंध है, मतलब साधारण सी बात है। जब मान लो कि कोई गांव में है, वो बम्बई जाके आता है, वो बाद में आने के बाद कुछ वो ये पहनता है, कुछ एक पहनता है, ऐसा कुछ अलग से व्यवहार करता है, अलग से चलने लगता है, गांव वाले क्या बोलते हैं उसको, बम्बई का हवा लग गया है। लेकिन ये भी आयुर्वेद के साथ संबंध है, साधारण सी बातें हैं। तो ये सब वे लूजिंग, प्रभुपाद जी ने कहा जो कहावतें होती ना, जो कहावत होते हैं, कहावत होता है गांव में अलग, उसका एक संग्रह बनाओ, क्योंकि एक कहावत अस्तित्व में उसको वो भी एक प्रमाण है। ऐसे हम तीन प्रकार का प्रमाण जानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, तीन अस्तित्व में दस है, उन दसों में एक है अतिहया, एक प्रमाण है, ये कहावत सब उसके अंदर कताता है और वो भी प्रमाण माना जाता है। तो सब भूल गया, लास्ट इट ऐसा। और रुद्राश्रीमद भागवतम की शिल प्रभुपाद की जय। विष्णु को भेजेंगे गौशाला।